जैसे पहाड़ अचल रहता है, इस प्रकार से ध्यान में स्थित रहे, डिगे नहीं। जहां शांति है वहां सुख है। पहली अवस्था शांति की है, उत्तम अवस्था आनंद की है। सबसे बढ़कर समता है। जो समता में स्थित है वो ज्ञानी है। समता माने सुख दुख में सम रहे। समता से बढ़कर भी एक और उल्ट विचित्र बात है। समता से बढ़कर उत्तम उल्टी विषमता है। अब आप कहोगे कि समता से बढ़कर विषमता क्या होती है? विषम तो हम होते ही हैं, और आप समता को ज्ञानी बताते हो, तो ये रहस्य की बात है। समता से बढ़कर उल्टी विषमता उत्तम है। उल्टी विषमता, इसको समझना है। जैसे यहां से नौका चलाई, सब लोग उस नौका में बैठ गए, नौका में वजन ज्यादा हो गया। अब कहा भाई दो चार आदमी नौका से उतर जाओ, तो दो चार आदमी का उतरना कह दिया। अब जिस आदमी की नौका है उसके आदमी तो उतरे नहीं, दूसरों को पार तो करना है लेकिन लाचारी है, अब उतर गए। उस नौका वाले ने विचार नहीं किया, ये समता नहीं है। समता यह है कि जिसकी नौका है वो उसके आदमी भी थोड़े उतरे, थोड़े बाहर के भी उतरे, ये समता है। परंतु नौका वाले ही उतरे हैं और दूसरों को पहले जाने दे कि भाई हम उतर जाते हैं, पहले आप जाओ उसके बाद हम जाएंगे, ये उल्टी विषमता हुई। यह समता से भी बढ़कर है। जैसे भगवान से बढ़कर भगवान का प्रेम है, उसी प्रकार से समता से बढ़कर ये उल्टी विषमता है। अपने स्वार्थ के त्याग में जो विषमता है वो समता से कितनी ऊंची दर्जे की चीज है, क्योंकि वह समता सिखलाती है। दूसरे आदमी के दुख से दुखी होना और दूसरे के सुख से सुखी होना, ये उल्टी विषमता है। ऐसा होना चाहिए, दूसरों के दुखी होने से उसकी सेवा करने की इच्छा होती है। सेवा करने की चेष्टा करी तो एक कथन मात्र हुआ, कार्य नहीं हुआ। दूसरों से दुखी हो जाने से अपने आप ही अंतःकरण सेवा के लिए बेचैन होगा और उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इतना ज्ञान के मार्गी को अंतःकरण शुद्ध नहीं मिलता है जितना समता वाले को मिलता है। दूसरी बात और कहनी है कि भगवान के विधान में भगवान की दया ही दया का दर्शन करें। भगवान के विधान में आप अपना सुख ढूंढते हैं इसलिए आपको दुख होता है, तो भगवान का विधान दुख देने के लिए नहीं है। यदि कोई बीमारी या संकट आ जाए तो भगवान के सामने विषमता की बात समझनी चाहिए। ओए महाराज, मेरे पर इतनी बड़ी कृपा कर दी, ये तो कोई आपका खास प्रेमी होता है उसके ऊपर कृपा होती, वो कृपा आपने मेरे से कर दी। ओहो महाराज, कितनी दया की है, मेरे अंदर बीमारी भेज दी, मेरे अंदर संकट भेज दिया, मैं इस कृपा के लायक नहीं था लेकिन आपने इतनी कृपा कर दी, ऐसी विषमता लानी चाहिए। कोई गांव पर विपत्ति आती हो तो अपने घर वालों पर लेवे, घर वालों पर आती हो तो अपने पर लेवे, ये सबसे ऊंची बात है। लेकिन लोग उल्टा ही करते हैं, गांव वाले कुछ भी करें अपने आराम मिलना चाहिए, घर वाले चाहे कुछ भी हो मेरे को आराम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा बर्ताव करो। अपने से ज्यादा अपने स्त्री बच्चे इनको आराम दो, उनसे ज्यादा भाई के स्त्री बच्चों को ज्यादा सुख दो, उनसे ज्यादा घर वालों को दो, उनसे ज्यादा गांव वालों को दो। इसमें आपको अंत में प्रसन्नता मिलेगी और प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति का चिन्ह है। जैसे गंगा जी के पास जाते हैं तो ठंडी हवा आती है, चाहे बाहर कितनी गर्मी हो, गंगा जी में डूबे नहीं है, स्नान नहीं किया है, पर पास में ठंडी हवा चलती है। इसी प्रकार से इस समता के अंदर, इस विषमता के अंदर परमात्मा छिपे हुए हैं, उनकी शांति बताती है कि यहां परमात्मा है। साधक की साधना में काम क्रोध लोभ आदि को बाधक माना है, इनको कैसे हटाए कि दूसरे की सेवा करो। सेवा करने से काम क्रोध आदि बहुत जल्दी मिटेंगे, बातों से नहीं मिटेंगे। दूसरों के सुख से सुखी होने में हमारे अंतःकरण का द्वेष और दुर्गुण आराम से हट जाता है। अभी यहां बैठे हैं उनमें यदि किसी को परमेश्वर साकार या निराकार किसी की भी प्राप्ति हो जाए तो उससे बढ़कर और करना ही क्या, इससे ऊंचा संसार में कौन सा काम बाकी रह गया। इसलिए साधक को इस काम में जुटना चाहिए, क्योंकि इससे ऊंचा दूसरा कोई काम है ही नहीं। बड़े पुरुष लोक संग्रह के लिए काम करते हैं, साधक को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं लोक संग्रह के लिए करूं। परमात्मा की प्राप्ति में बहुत आनंद है। जो इस आनंद के अंदर चला जाता है उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती। उस आनंद के पास पहुंचने पर भी उस तक आगे न बढ़ देने के लिए भी कई बाधाएं आती हैं। सबसे बड़ी बाधा तो यह आती है कि मैं साधन करता हूं, मैं औरों से अच्छा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसी भावना करने से अहंकार आ जाएगा, आपका मार्ग रुक जाएगा, और इतना ही नहीं है आपका पतन भी हो सकता है। जैसे कोई आदमी बहुत ऊंची जगह से धकेला जाए तो कितना गहरी चोट लगती है। इसलिए ये बात तो साधक को माननी नहीं चाहिए कि मैं बहुत साधन करता हूं और मैं औरों से बहुत अच्छा हूं। हमारे साधन करने से दुनिया को लाभ होता है, ये बात दुनिया सोचे, आपको सोचना नहीं चाहिए। जहां ये ख्याल आया कि दुनिया के वास्ते चल रहा हूं, वहीं उसका पतन हो जाएगा। अहंकार, ममता, आलस्य, ये सब आवरण के भेद हैं। अपने आप को ज्ञानी मान लेना बहुत बड़ा आवरण है। इस आवरण का पर्दा बड़ी मुश्किल से हटता है, हट नहीं सकता। ऐसे ही ध्यान करने वाले व्यक्ति के मन में विक्षेप दोष बहुत आते हैं और निद्रा भी आती है। हर एक मार्ग में कुछ न कुछ बाधा आती है, इसलिए मनुष्य को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। इसमें लोभी आदमी को सामने रखना चाहिए। जैसे लोभी आदमी है, उसके पास हजारों रुपए है, रोजगार भी बहुत बड़ा है, फिर भी वह अपना रोजगार नहीं छोड़ता और रुपया पैदा करने की चेष्टा करता ही है। इसी प्रकार से साधक को साधन का लोभ नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति मार्ग को भगवान के नाम का लोभ छोड़ना नहीं चाहिए। लोभ करना हो तो भगवान के नाम का लो, पैसों का क्या लो, पैसे यहीं छूट जाएंगे, भगवान का नाम साथ में जाएगा। जहां अपने मतलब की बात होती है, वहां आदमी जान करके आलस्य को भगाता है। भगवान के नाम से आपने अपना कोई मतलब नहीं रखा, इसलिए आपको आलस आता है। कितनी बढ़िया बात। जितने दोष हमारे अंदर घुसते हैं, वो पोल में घुसते हैं। जैसे चोर है, वो अंधेरे में घुसता है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में बैराग की कमी से दोष घुसता है, भक्ति मार्ग में आलस्य के मार्ग से दोष घुसता है। इनसे बचना चाहिए। और यदि परमात्मा की प्राप्ति वाला आदमी मिल जाए तो उसके पास बैठकर पूरी बातें करनी चाहिए। जैसे हमारा कोई आदमी किसी दूर विदेश में रहता हो और वहां की वो खबर लेकर आता हो तो आप उसका पीछा नहीं छोड़ते, छोटी छोटी बातें पूछते हैं, वो कैसे खाता है, कैसे रहता है, कैसा कमरा है, कैसे वो वहां काम पर जाता है, कितनी बात पूछेंगे। और आप उसमें सुन सुन करके आनंदित होंगे। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति वाला आदमी मिले तो उसके पास बैठकर परमात्मा की बात करनी चाहिए। चार पांच साधक मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, वो बराबरी के लोग मिलते हैं। जैसे ताश खेलने वाले होते हैं, वो बराबर के ताश खेलने वाले मिलते हैं तो ताश खेलने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे पांच छह साधक मिल जाए तो भगवान की चर्चा करें तो इतना आनंद आना चाहिए कि उनको समय का ही ज्ञान न रहे। मान बढ़ाई में प्रसन्नता, निंदा अपमान में मलिनता, शोक में प्रतिकूलता, ये तो सभी में ही होता है। फिर आप लोग किस बात की साधना करते हो? दूसरों की निंदा करना, दूसरों का अपमान करना, ये अपने को हृदय से निकाल देना चाहिए, अच्छा नहीं है। अपनी निंदा करो, अपना अपमान उसको अच्छा समझो। कोई हमारी निंदा करता है, अपमान करता है, तो मन में प्रसन्न हो जाओ कि ये हमको उपदेश दे रहा है, इसकी बड़ी भारी कृपा हो रही है। ये जिस बात को सोचकर निंदा कर रहा है वह दोष अपने में है तो हटाओ, यदि नहीं है तो सावधान हो जाओ कि आ न जाए। आपका बिगाड़ क्या है? हम आपको रहस्य की बात बताते हैं कि जितना नुकसान प्रशंसा करने वालों से है उतना नुकसान आपका निंदा करने वालों से हो ही नहीं सकता। दो व्यक्ति पास पास में बैठे हैं, दोनों को ही बीमारी है, उनमें से एक आदमी का आपसे ज्यादा जान पहचान है तो उसकी याद पहले आएगी कि भाई इसकी इसका काम पहले करो, सेवा पहले करो, बीमार है। बीमार तो पास वाला भी है, वो याद क्यों नहीं आता? इसमें ममता का दोष है। और जिसके ममता है उसमें अहंकार जरूर है। जैसे बर्फ है तो उसमें पानी जरूर है। पानी के बिना बर्फ नहीं हो सकता। अहंकार तो ममता के बिना रह सकता है, पर ममता अहंकार के बिना नहीं रह सकती। भगवान के रहस्य और तत्व की जो बातें हैं उनमें ज्यादा महत्व नहीं देगा जो उस विषय में बढ़ा हुआ होगा। जैसे रत्न का ज्यादा मूल्य उसका जानकार जोरी दे सकता है, यानी जो उस विषय में जितना जानता होगा उतना ही मूल्य देगा। अपने लोग उसका बहुत कम मूल्य देते हैं क्योंकि अपने उस बात को समझते ही नहीं है। भगवान के रहस्य तत्व की जो बातें हैं उनमें ज्यादा महत्व अहंकार और ममता वाला नहीं देगा। जिसमें से ये निकली हुई वो बहुत महत्व देगा। उसकी रुचि नहीं भगवान में, श्रद्धा नहीं, इसलिए अपने असंभव समझ करके मूल्य नहीं करते कि भाई भगवान मिलने तो है नहीं, असंभव है हमको, अब क्यों इधर साधन भजन में लगे, मूल्य नहीं करते हैं। ये अज्ञता है, आलस्य है, प्रमाद है, भ्रम है, ये त्रुटिपूर्ण विचार है। मनुष्य को भगवान मिलना असंभव है तो किसको संभव है? चलना ही नहीं है इसलिए बहाना बना लिया कि भगवान की प्राप्ति असंभव है। एक भक्ति के मार्ग में चलने वाला पुरुष है, दूसरा ज्ञान के मार्ग में चलने वाला पुरुष है, दोनों क्या लाभ उठाते हैं? भगवान एकदम जब सामने को मिलते हैं तब भगवान की क्रिया रूप बर्ताव को देखकर भक्त मुग्ध हो जाता है। वाह, क्या रूप है, क्या बांसुरी है, क्या देखना है, कैसे आभूषण है। ये भक्त की बात हुई। ज्ञानी आदमी को भगवान मिले तो ज्ञान आनंद प्रकाश में मग्न हो जाता है। भक्त गुण प्रभाव लीला रूप की तरफ विशेष लक्ष्य देता है। रूप गुण लीला प्रभाव से प्रसन्न होने में प्रेम की प्रधानता है। बातों को सुनकर काम में लेने में श्रद्धा की प्रधानता है। तात्विक बातें वे हैं ज्ञान प्राप्ति वालों को अनुकूल पड़ती है। आचरण और गुण को समझ ले तो तात्विक बातों से और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तात्विक बातों को समझ ले तो आने वाले दोष है वो फिर आ नहीं सकते, उनका दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, चोर कहां से घुसे, ऐसे ही तात्विक बातों को खूब अंदर समझ लिया अब ये काम क्रोध आदि चोर अंदर आ नहीं सकते हैं। इसलिए तत्व को समझना चाहिए। तत्व को समझने के लिए पहले संसार को समझो। ये संसार त्रिगुणात्मक है, दोषमय है, गुण यह उभयन देखिए। विशेषता इस बात की रहेगी कि दोष और गुण दोनों की तरफ ध्यान न दे। यदि भगवान में कोई दोष देखते हो तो ये भ्रांति है। पीलिए के बीमार को अपने अंदर का पीड़ापन दूसरों में दिखता है, ऐसे ही परमेश्वर तो निर्दोष है, उनमें अपना ही दोष दिखाई देता है। ऐसे भगवान के जो महापुरुष हैं, प्रेमी लोग हैं, उनमें भी दोष नहीं होते, क्योंकि दोषी आदमी सत्संग की बात कर ही नहीं सकते। बुद्धि चार प्रकार की, तामसी बुद्धि, राजसी बुद्धि, सात्विक बुद्धि और सबसे ऊंची परमात्म बुद्धि। गुड। सब जगह तीन प्रकार की बुद्धि आती है, शेर दिन चार प्रकार की बुद्धि। बहुत अच्छी बात। तामसी में दोष रहते हैं, सात्विक बुद्धि वाले में दोष बहुत कम रहते हैं, राशि में तामसी की अपेक्षा थोड़े कम रहते हैं पर दोष रहते हैं, और जिसमें परमात्मा बुद्धि रहती है उसमें दोष की कोई बात ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। हर एक मनुष्य के अंदर गुण रहते हैं, गुणों को ग्रहण करना चाहिए, किसी आदमी में दोष देखना ही नहीं चाहिए। दोष देखने वाला पुरुष कभी उन्नति नहीं कर सकता। दोष अपने में देखो और गुण दूसरों को देखो, बहुत जल्दी आपका जीवन चमक उठेगा। भगवान में गुण देखो, संतों में गुण देखो, महापुरुषों में गुण देखो और अपने अंदर दोष देखो कि देखो ऐसा महापुरुष बनने में हमारे अंदर ये दोष है, निकलना चाहिए। गांव के दो चार आदमी मिलकर भगवत चर्चा करें, आपस में एक दूसरे के गुणों को ग्रहण करें, थोड़े दिनों में आपके अंदर बहुत बड़ा अंतर दिखे आएगा। दूसरों को पता नहीं चलता है। अपने दोषों को खोज खोज कर निकालना चाहिए। जो आदमी अपने दोषों को छिपाता नहीं है यह उसका कम गुण नहीं है, बहुत श्रेष्ठ गुण है। मनुष्य में बड़ी भारी एक कमी है, अपने गुणों को प्रकट करता है और दोषों को छिपाता है। छिपाना अपने गुणों को चाहिए, प्रकट अपने दोषों को करना चाहिए। अपने गुणों को प्रकट करना और दोषों को छिपाना ये पतन का मार्ग है। जो अपने को गुणवान श्रेष्ठ समझता है उसका बड़ा भारी जल्दी पतन हो गया। अपने को यदि अच्छा सत्संग मिले, अच्छे पुरुष मिले, तो अपने को यही समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, फायदा हो गया। हम कहाँ जाने वाले थे, कैसे बचा लिया। और महापुरुष तो ये समझते हैं कि भगवान ने बड़ी कृपा की कि इन लोगों के साथ बैठकर भगवान की चर्चा हुई। ऐसे आपस में बैठकर चर्चा से लाभ लेना चाहिए।